पहली आयतों में हमने सुलह हुदैबिया के तनाजर में कुछ चीजें देखी थी, फिर आयत 4 से लेकर 7 तक सहाबाए कराम और मुनाफिकीन और मोमिनीन की बात थी। अब इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से कुछ बातें हैं जो अकीदे से बहुत गहरा ताल्लुक रखती हैं, और ये वो आयतें हैं कि जिसके बारे में लोगों ने गलत फहमियां पैदा की। मिस कोट की जाने वाली आयतों में से कुछ ऐसी आयतें हैं, तो हम इसमें से एक एक को देखेंगे। फरमाए इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। किसको? नबी सल्लम को। इससे पहली बात तो ये पता चलती है कि नबी सल्लम खुद नबी बन के नहीं आए थे, अल्लाह ने भेजा था। और रसूल का मतलब ही ये होता है किसी का भेजा हुआ, कासिद, एम्बेसडर। और एम्बेसडर कभी भी खुद नहीं आता, बल्कि उसको कोई पीछे से भेजता है। किस तरह भेजा, आपकी क्या खूबियां थी? पहली बात, शाहिदन, शहादत देने वाला। आप किस चीज़ की शहादत दे रहे थे? दीन की शहादत देते थे, शहादतें हक की गवाही देने वाले। ईमान वालों को जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था, अल्लाह के नबी ने वो काम खुद भी करके दिखाया। ये नहीं कि दूसरों को तो कहा जाए कि आप दीन का काम करें, दीन पे रहें, लेकिन इसके बाद खुद उस काम पे ना हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी शहादत हक की गवाहियां देते हुए गुजरी, गैर मुस्लिमों को इस्लाम का पैगाम देते हुए। फिर दूसरी खूबी थी आपकी, वह मुबशिरन, बशारत देने वाला, खुशखबरियां देने वाला। आप दूसरों को खुशखबरी सुनाते थे। ये बिल्कुल वही आयत है जो सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 45 में गुजर चुकी, यानी नेकियां करने वालों को खुशखबरियां, अल्लाह की बात को सुनने और मानने वालों को खुशखबरियां देते थे आप। आज हमारा ख्याल क्या है कि नबी सल्लम गलत काम करने वालों को भी खुशखबरियां देते थे, हालांकि पूरे कुरान में या हदीस में कहीं आपको नबी सल्लम की ज़ुबान से कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिलेगी कि जिसमें यह लिखा हो कि चोरियां करो फिर भी जन्नत है, डाके डालो फिर भी जन्नत है, शिर्क करो, बिदत करो, जन्नत है। आज के दौर में ज़रा कोई सख्त बात की जाए तो लोग कहते हैं ये लोग डराते बहुत हैं, ये डरावे बहुत देते हैं। क्यों ना डराया जाए? जो निडर होगा उसी को डराया जाएगा ना। हाँ, खुशखबरियाँ उनको मिलती थी जो नेकियाँ करके भी पीछे रहते थे, जिनको खौफ था कि हमारी नेकियाँ कबूल होंगी कि नहीं होंगी। सूरह फुरकान में भी एक आयत है कि जिसमें आता है कि वो लोग अल्लाह के रास्ते में देने के बावजूद भी डरते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि अल्लाह के नबी इससे कौन लोग मुराद हैं, कि चोरियाँ करने वाले या गलत काम करने वाले? तो कहा नहीं, सिद्दीक की बेटी से मुराद वो लोग हैं कि जो नमाजें भी पढ़ते हैं, तहज्जुदें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं दिन में, फिर भी अल्लाह से डरते हैं कि अल्लाह पता नहीं हमारा कबूल भी हो रहा है कि नहीं। और मोमिन की अलामत क्या है? कि वो नेकी करके भी डरता है। और मुनाफिक की अलामत क्या है? कि सारे बुरे काम करके कहता है मैंने किया ही क्या, मैंने क्या किया हूँ। एक हदीस में इसको इस तरह से पेश किया गया कि मोमिन गुनाह कर लेना तो उसकी कैफियत क्या होती है कि जैसे वो किसी पहाड़ के पास खड़ा है और वो पहाड़ अपनी जगह से उठ के उसके सर पे गिर जाएगा, यानी उसको अपना छोटा सा गुनाह पहाड़ जितना बड़ा लगता है। इसके बरक्स मुनाफिक का हल क्या है? कि वो गुनाह करके ऐसे उड़ा देते हैं जैसे नाक से मक्खी उड़ाना। आप देखिए लोग बड़े अदा से सब करते हैं, अच्छा अल्लाह कर देगा माफ़, अच्छा कुछ दिन जो हम जहन्नुम में ठहर जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बातें करते हैं नहीं, अल्लाह के नबी ने खुशखबरियां उनको दी थी कि जो नेकियां कर कर के रातों को जाग जाग के अल्लाह के सामने रो रो के फिर भी ये सोचते थे कि अल्लाह ताला पता नहीं हमारी कबूल होगी कि नहीं। तो लिहाजा मुबशिर, बशारत देने वाला, व नज़ीरा, और आगाह करने वाला, डराने वाला। ये किन के लिए है? जो निडर लोग हैं, जो अपनी इस दुनिया में मगन हैं, जो समझते हैं कि हम दुनिया में बड़े कामयाब हैं, हमने जो चाहा वो पा लिया, हमारे लिए यही सारी चीज़ें थी जो हमने पा ली और हमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। कहा ऐसे लोगों को आगाह करो, वंजर इन नास। आपको पता है कि दूसरी वही जो नबी सल्लम पे नाजिल हुई थी वो क्या थी? वंजर अशीरतक अलअक्रबीन, और डराइए अपने करीब के रिश्तेदारों को। पहली वही क्या थी? इकरा बिस्मि रब्बिक, खुद पढ़े अल्लाह के नाम के साथ। जब इंसान अपनी इसलाह कर ले तो उसके बाद दूसरा काम क्या है? कि अब अपने करीबी लोगों को डराएं। तो लिहाजा नज़ीर, मुनज़िर, शफ़क़त से डराना, लोगों को बुरे अंजाम की खबर देना, ये अल्लाह के नबी के खसाइस में से था। ये तीन खूबियां बयान की गई थी। अब यहाँ मैंने बात की शाहिदन की, क्या कि आप शहादत हक की गवाही देने वाले थे, लेकिन बास लोगों ने इस आयत के तर्जमे में रतो बदल कर दिया। वो शाहिद का तर्जमा करते हैं हाजिर नाजिर, शायद आपने एक लफ्ज़ सुना होगा नबी सल्लम के बारे में, कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह के नबी हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। हाजिर तो समझ आ गई ना कि जैसे आप हाजिर हैं प्रेजेंट के मानों में, नाजिर कहते देखने वाला। यानी उन्होंने फिर उससे एक अकीदा इससे भड़कर क्या किया कि अल्लाह के नबी सल्लम जब दुनिया में नहीं आए हुए थे तब भी वो हाजिर थे और दुनिया में जो कुछ हो रहा था उसको देख रहे थे, और अब दुनिया से चले गए। वैसे वो तो नहीं मानते कि चले गए या फौत हुए, वो तो कहते हैं पर्दा किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि अल्लाह के नबी हर एक के हाल को देख भी रहे हैं और नाजिर हैं। फिर इसका आप देखिए इजहार नबी सल्लम के रोजे पे जाके लोग जो कुछ हरकतें करते दिखते हैं, बाकायदा ऐसे लगता है जैसे बातचीत हो रही है, वो नाते, वो दुरूद, वो सलाम, जिसमें ऐसी ऐसी बातें पेश की जाती हैं। तो अल्लाह के नबी की अमली जिंदगी को अगर देखें तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या आप हाजिर और नाजिर थे कि नहीं। अब चूंकि कुरान पाक की तकमील बिल्कुल करीब है, 26वें पारे पे जो लोग पहुंच चुके हैं उनका अकीदा वाजे होना चाहिए, और जो बात दलाइल की बुनियाद पे समझ आती है वो कभी जज्बात से समझ नहीं आती। पहली बात आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाजिर और नाजिर थे यानी हर जगह थे, और ऐसे लोगों से फिर एक और बात पैदा होती है और वो क्या है कि आप सबने इधर जमा होकर चंद खवातीन ने कुछ दुरूद पढ़े, बैठ के खड़े होकर सलाम पड़ा, तो वो कहते हैं खामोश हो जाओ अब नबी आए हुए। अच्छा जी, आपने इधर किया, वो दो गलियां छोड़ के वहां भी एक जगह मिलाद हो रहा है, कुछ लोग वहां बुला रहे हैं, एक ही वक्त में बुला रहे हैं, आप बताइए एक नबी पहले इधर आएंगे कि उधर आएंगे? वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, वो आ जाते हैं। अगर अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर थे तो पहली बात यह है कि फिर हम ये क्यों कहते हैं कि 13 साल आप मक्का में थे फिर 10 साल मदीना में गए? अगर हाजिर नाजिर थे तो मक्का में भी हाजिर थे, उसी वक्त कोई कहता अल्लाह के नबी मैंने तो आपको मदीना के बाजारों में भी चलते देखा, क्यों 3 रातें गारे सौर में छुपे रहे, क्यों आपको इतनी मुश्किलात आई? सीरत की किताबें पढ़ें, जब अल्लाह के नबी सल्लम जंग के लिए जाते थे मदीना से बाहर तो पीछे किसी को अपनी जगह छोड़ के जाते थे, हजरत अली को छोड़ते थे, बाज दफा अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम को छोड़ते थे। अगर आप हाजिर और नाजिर थे तो जाते और कहते मैं पीछे भी हूँ, फिक्र ना करो मुझे सब पता है, आप मैदाने जंग में होते कुछ भी होता नहीं, बिल्कुल अकल से हटी हुई बात है। लेकिन ऐसी आयतों को सामने मिसकोट करके सीधे साधे लोगों को दलाइल दिए जाते हैं कि देखो जी कुरान में लिखा है। फिर आप देखिए कि अगर अल्लाह के नबी नाजिर थे, आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मामले हुए कि जिस वक्त आपने इंतहाई अजियत सही, मसलन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी, सूरत नूर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आपको नहीं पता चल सका 1 महीना तक कि हज़रत आयशा ने वाकई ये बुरा फेल किया कि नहीं किया, वो अज़ियत कितनी सख्त थी। अगर आपको सब पता होता तो आप इतने तरद्दुद में क्यों रहते, फौरन मान जाते? क्यों आप खुश हुए उस दिन जब आयतें नाजिल हुई और कहा आयशा मुबारक हो अल्लाह ने तेरी बेगुनाही साबित कर दी? एक जंग में अल्लाह के नबी सल्लम के साथ हज़रत आयशा थी और आपका हर्क हो गया, पूरा काफला रुका हुआ है, तैयारी है लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि वो हार नहीं है, ढूंढते ढूंढते में अंधेरा हो गया, जब देखा नहीं मिल रहा चलो भाई चलते हैं, जूं ही उठे आप ही की ऊँटनी के नीचे पड़ा हुआ था। तो अगर हाजिर और नाजिर होते तो कैसे करते? यहूद औरत ने एक दफ़ा आपको दावत के नाम पर खाना खिलाया जिसमें जहर मिला हुआ था, चख लिया आपने, फेंक दिया, फिर उसी के असर से कुछ साल के बाद आपकी डेथ हुई। तो कितने वाकयात हैं, यहूद ने आपको बुलाया, आए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, प्लान क्या था कि जूं ही आप आएंगे ऊपर से चक्की का पार्ट गिराएंगे, आपको शहीद कर देंगे, आप चले गए। ऐन वक्त पे हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी इस दीवार से पीछे हटे, आपके लिए साजिश तैयार की गई है। कहीं कोई एक दलील नहीं मिलती कि जो इस लफ्ज़ की पेश की जाती है, इसलिए कभी कोई कुरान पढ़े, मैंने देखे हैं लोगों के हाथों में ऐसे ऐसे कुरान कि मैं कहती हूँ अगर इनको पता चल जाए कि इसमें इतनी तावीलात है तो इससे तो इतना डरें जैसे बिजली के करंट से डरते हैं, क्योंकि बिजली तो जान लेगी और ये तो ईमान ले लेगा। और ना समझी में जहाँ जिस चीज़ का गलबा होता है लोग उसी के पीछे लग जाते हैं बगैर सोचे समझे, हाँ जी है तो कुरान ही है ना, ठीक है कुरान पढ़ ले आप, लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं है जिस चीज़ की आप उसके अंदर क्या देखें। इसी आयतों के शुरू में आपको शायद मैंने जिक्र किया है कि नहीं मैं भूल गई कि जो पहली आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, लियग़फ़िरा लक अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिक, मैंने खुद एक कुरान के अंदर इसका तर्जमा पढ़ा है कि नबी अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया कि अगले लोगों के भी और पिछले लोगों के गुनाह आप माफ़ कर लें। ना ग्रामर से इसका असूल बनता है ना टेक्स्ट से बनता है, और सीधे साधे लोग बेचारे ना उनको अरबी आती ना ग्रामर आती ना उनको कुछ आता, वो कहते हैं देखा अल्लाह के नबी तो गुनाह माफ़ करने वाले, यही तो अकीदा नसारा ने गढ़ा कफारे का कि कुछ भी गुनाह करो आके जीसस के नाम पे तुम एक गाना गाओ संडे के संडे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट्स का दीन नहीं है, इस्लाम बहुत लॉजिकल दीन है, 2+2 वाला रिलीजन है, यानी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल रिलीजन है। इसमें कोई धोखा वही खाएगा जो बिल्कुल समझ से दूर है। तो लिहाजा इस बात पे लंबी बात इसलिए हुई कि ईमान को और अकीदे को इंसान को अपने दुरुस्त रखना चाहिए। फिर आगे फरमाया, लितुमिनु बिल्लाही, और ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, वह रसूल ही और उसके रसूल पर, वह तुअज़्ज़िरूहू और उसकी मदद करो, वह तुवक्किरूहू और उसकी ताज़ीम भी करो, वह तुसब्बिहू बुकरतं व असीला और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो। यानी अल्लाह के नबी की खूबियां बयान करने के बाद क्या कहा कि अब उम्मत का क्या काम है। देखिए हर आयत ली से शुरू हो रही है ना, ताके ताके अब तुम क्या करो। पहली बात यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, सबसे पहले ईमान बिल्लाह की बात हुई, इसलिए कि अल्लाह को ना मानकर या रसूल को अल्लाह के साथ बराबर खड़ा करके लोग शिर्क के मुर्तकिब हो जाते हैं। दूसरी बात वह रसूल ही, अब रसूल की बात करो, सबसे पहले अल्लाह का मुकाम है, फिर उसके बाद रसूल का मुकाम है। फिर उसके बाद क्या फरमाया, वह तो अज़ीरू हो और ताके तुम उसकी मदद करो। अब हु से क्या मुराद है, रसूल। अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को एक मनहज एक काम दे रहे हैं, और वो क्या कि तुमने रसूल की जिंदगी में उसके उस काम में मदद करनी है। ये जो मिशन लेके आया है वो उसका तनहा मिशन नहीं है, ये उसका कोई जाती काम नहीं है। इस रास्ते में तुम में से जो भी मदद करता है वो असल में अल्लाह के काम में मदद कर रहा है, रसूल के ऊपर कोई एहसान नहीं है, तुम इस काम में उसकी मदद करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे कराम ने इसमें अपनी हैसियत से ज्यादा किया। जब भी कोई एक दफा इस्लाम के करीब आ गया ना, फिर नहीं पलटा। ये इस्लाम की खूबी है और सच्चे ईमान की और सच्चे दीन की यही निशानी होती है। जब तक आप उससे दूर हैं तासुब की वजह से, किसी के बदगुमान करने की वजह से, एक दफा जब आप करीब से आके सच्चे दीन को देखते हैं, आपको खुद ही समझ आता है, फिर बंदा नहीं पीछे पलटता। अब तो अज़ीरू तो कह दिया, अज़रा यु अज़ीरू से है ताज़ीर, इज्जत यानी किसी की मदद करना, लेकिन साथ ही कहा व तो वक्किरू, अब इसका वक्कार भी करो, जैसे उर्दू में कहते हैं ना वक्कार, इज्जत भी करो। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता क्या कि इंसान जब किसी की मदद करने लग जाता है ना तो उसकी इज्जत नहीं करता। आप किसी रिश्तेदार की अगर कुछ मदद कर रहे हैं तो आप फिर उसको ताने देते रहेंगे, तुम हमारे टुकड़ों पे पले, हमने तुम्हें खिलाया पिलाया। कहा नहीं, ना सिर्फ ये कि इस काम में तुमने नबी की मदद करनी है बल्कि इसकी ताज़ीम भी करते रहो, ताज़ीम के बगैर बात नहीं बनेगी। आज वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत में नाते भी पढ़ते हैं और गुन भी गाते हैं आपके, लेकिन बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा इज्जत से हटी भी बात कर देते हैं कि वो नाम जो अल्लाह ने भी अपने नबी का नहीं लिया वो लोग लेने लगते हैं। कैसे, बस आप देखिए, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए इस पे चूंकि बातें आ रही, और ये वो आयतें हैं जो अमूमन लोग रेफरेंसेस में पेश करते हैं नबी की मोहब्बत में, हालांकि इसी के अंदर मैसेज छुपा हुआ है। आप देखिए कि आपने कभी किसी को या मोहम्मद कहते सुना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे कुरान पाक में अल्लाह के नबी को या नबी भी कहा गया है, या यूहा रसूल भी कहा गया है, लेकिन या मोहम्मद नहीं कहा गया। कुरान पाक में या आदम का लफ्ज़ भी है, आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा, या मूसा का लफ्ज़ भी है, लेकिन या मोहम्मद नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी का नाम नहीं लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम कैसे नाम लेते हैं। पहली बार ये तो बनी इसराइल की एक जहालत बताएगी कुरान में कि अपने नबी का नाम लेते थे, या मूसा लन नसबिर अला तौमिन वाहिद, ए मूसा हमसे नहीं सब्र होता है खाने पे। तो पहली बात है कि अल्लाह ने भी नहीं लिया। दूसरी बात है, क्या इंसान अपने बड़ों का नाम लेता है? कभी आप में से, मैंने, हम में से किसी ने अपने बाप का इस तरह नाम लिया? कोई शौहर का नाम भी लेता हो मेरा हाल, उसको भी इस तरह तू करके नहीं पुकारते कि ओ फलां। मेरा हाल, अब तो लोग बच्चों का भी नाम इज्जत से बुलाते हैं, और जो या मोहम्मद कहते हैं उर्दू में वो है ओ मोहम्मद। जरा आप सोचिए कितनी इज्जत से घिरी हुई बात है। तो क्या ये तुवक्की रूह वाली बात है? ये तो अगली सूरत आ रही है इंशाल्लाह, आप बहुत कुछ सीखेंगे उसमें, बल्कि आप अपने उन साथियों को भी बुलाएं जो अभी नहीं आ रहे, क्योंकि सूरह हुजरात में बहुत सारी अखलाकी बातों के ऊपर बात होगी, उसी में आप पढ़ेंगे कि ये तो बदुओं की, देहाती लोगों, अनपढ़ जो देहाती होते हैं उनकी आदत थी कि बाहर से पुकारते थे या मोहम्मद उखरुज, या मोहम्मद उखरुज, और मोहम्मद बाहर आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा मोहब्बत के नाम पर इंसान ताज़ीम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब रिश्तों में से इज्जत खत्म हो जाती है ना, पीछे कुछ भी नहीं रहता। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। बस कहते हैं कि तुअज्जी रूह हूँ और तुवक्की रूह हूँ, में जो हूँ है ना, इसकी ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है कि अल्लाह की मदद करो तो मुराद वही है कि अल्लाह के दीन की मदद करो, और अल्लाह की इज्जत करो तो मुराद ये है कि अल्लाह की इज्जत करो। लेकिन पिछली आयतों को अगर आप साथ मिलाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा था, तो ये बात उनकी तरफ से ज्यादा आती है, और सहाबा कराम ने इन दोनों बातों पर बहुत ज्यादा अमल किया। वो अल्लाह के नबी की दिल और जान से इज्जत करते थे। और इसी तरह सूरत निसा आयत 80 में भी आता है कि मैं युति रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। गोया के जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के काम में हिस्सा भी दिया जाए और उसकी इज्जत भी की जाए। व तुसब्बिहू बुकरतं व असीला, और उसकी तारीफ करो। हु यहाँ तो खास तौर पे आप देखें ना कि अल्लाह की तरफ इशारा है कि सुबह शाम तुम अल्लाह की तस्बीह करो। अब कोई इसको देख के कहे कि सुबह शाम अल्लाह के नबी के नाम पे दुरूद पढ़ो या उनकी कुछ ऐसी तारीफें करो तो बात नहीं समझ आती। हाँ, अगर अल्लाह के नबी की तारीफ भी की जाएगी तो वो भी उसी हद तक की जाएगी जितनी अल्लाह के नबी ने कही। आपने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में कहा कि तुम मेरा मुकाम वैसे न बढ़ाना जैसे कि नसारा ने अपने नबियों का वो बढ़ाया। कहा वो कैसे? कहा जब उनमें से कोई फौत हो जाता था तो वो उसकी कब्र को ईदगाह बना लेते थे, मेले लगते थे, उर्स होते थे, वहाँ जाके लोग कब्रों पर रौनक मेले करते थे, तुम मेरी कब्र को मेला न बनाना। तो लिहाजा पता क्या चला कि ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उनको पता नहीं है। यकीन करें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें, पता नहीं है क्योंकि कुरान नहीं पढ़ा। जिन लोगों के पास वो बेचारे जाते हैं रूहानी खुराक लेने, वो तो उनको थोड़ी सी दिलासे दे के तो खाना खिला पिला के भेज देते हैं। असल कुरान खुलता है तो आंखें खुलती है ना। अगर आज मैं और आप इस आयतों को ना पढ़ रहे होते तो हम कभी भी इस टॉपिक पे बात ना करते। मैंने तो कभी इस तरह के टॉपिक छेड़े ही नहीं, आम दरसों में कभी नहीं दिया ऐसा दर्स। क्यों? जरूरत ही नहीं। जिसने कुरान पढ़ना है उसको एक एक चीज़ समझ आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान को तरतीब से पढ़ो। वो लोग बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक पूरा कुरान समझ के नहीं पढ़ा। वो एमए कर लें, वो मास्टर्स करें, वो मेडिकल में हैं, वो सीए बन जाए, वो बिल्कुल नाकाम है, अल्लाह की नज़रों में जीरो है। क्योंकि आज कब्र में जाएंगे ना तो हमारी सारी डिग्रियां बाहर। कोई मुनकर नकीर के सवालों के जवाब पे अपनी मास्टर की डिग्री नहीं देगा कि ये ले लो और मुझे पास कर दो। वो कहेगा वो ठीक है, अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम कामयाब थे, तुम ये बताओ कि यहाँ के लिए क्या लेके आए हो। लेकिन कितना शैतान समझदार है और हम कितने ना समझ हैं। सारी दुनिया के काम हमारी टॉप लिस्ट पे होते हैं। 5 साल बाद क्या करना है वो भी पता है, अगले साल क्या करना है वो भी पता है, लेकिन इस किताब को सीखने और समझने का कोई प्लान नहीं। खानापुरी के लिए कोई एक खाना रखा हुआ है, कहीं हफ्ते में एक दिन जाके घंटा लगा लेंगे दिल की तसल्ली के लिए कि हम कुरान पढ़ते हैं। नहीं, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, इसलिए कि इस्लाम फुल टाइम रिलीजन है। और कोई सारी ज़िंदगी नहीं अल्लाह कहता करो, साल 2 साल में आप पूरा कुरान समझ सकते हैं। जाइए अमल कीजिए, सीखिए, दूसरों को सिखाएं, नहीं तो अपनी ज़िंदगी संवारें। लेकिन जो इस हाल से दुनिया से चला गया कि उसने एक बार भी कुरान नहीं पढ़ा, बहुत बड़ी हुज्जत उसके सर पे होगी। अल्लाह पूछेंगे कि क्या तुम्हें 60-70 साल में इतना भी मौका नहीं मिला कि तुम मेरी किताब को एक दफा समझो? सारी जहालत जो आज फैली हुई है उसकी वजह ही क्या है कि लोगों को कुरान के करीब नहीं आने देते। तो अल्लाह ताला हमें भी इस पे कायम रखे और अभी तक जो नहीं आए उनको तौफीक दे के वो भी आए। अपने लिए भी और उनके लिए दिल की गहराई से दुआ करें। अभी तक जितनी बात हुई इसके अंदर कोई सवाल, कोई कमेंट, आप सबने इनका सवाल सुना? मैं बोल देती हूँ ताकि जब बाद में इस क्लास को सुनेंगे तो उनको फायदा। इनका सवाल ये कि हमारे जो साथी ना मालूम होने की वजह से इस तरह के अकीदे रखते हैं तो उनके साथ हम क्या मामला करें? देखिए, जो तरीका अल्लाह ने तालीम का दिया है ना, बस वही बेहतर है। या अय्युहन्ना सो बुदू रब्बकुम, अल्लाह ने पहली दफा इंसानियत को पुकारा कि ए लोगो क्या करो, मिलाद ना करो, खत्म ना दो, या दुरूद ना पढ़ो, नेल पॉलिश लगा के नमाज ना पढ़ो, कुछ नहीं कहा ना। जो तरीका अल्लाह ने दिया है ना तबलीग का, वही आप भी रखें। पहले लोगों को बंदगी सिखाएं, तौहीद पक्की करें, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मार्फत, वो कौन है, उसने क्या दिया है, जब लोग उस पे जम जाएं उनको बताओ कि अल्लज़ी खलकक़कुम वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को उसने पैदा किया, फिर कायनात से दस्तूर, फिर आप अगली आयतों में देखते हैं कि नबी सल्लम की रिसालत की बात। तो तरतीब बहुत लाजिम है। हम लोगों को ये पता ही नहीं पहले क्या कहना है बाद में क्या कहना है। पहले लोगों के दिल नरम करें, ताकि आज आंखें बंद हो जाएं, कब्र में करना क्या है, और ये किसी लम्हे भी हमारे साथ हो जाना है, एक बस ऐसे छपक आनी है और हम यहाँ की बजाय वहां आने हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरत है तैयारी की।